करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से शासन चलाए कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारे त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी हमने आत्मा के बारे में जाना और अब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे। आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं और वो किसी डिपार्टमेंट का निरीक्षण करते हैं, तो क्या देखते हैं उसमें? भाई इस डिपार्टमेंट में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कहीं हिसाब किताब में कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, हर एक चीज का निरीक्षण करते हैं, काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वास्तव में आत्मनिरीक्षण में भी हम खुद ही निरीक्षण करने वाले हैं और खुद का ही निरीक्षण करते हैं। वहां तो दो लोग अलग अलग होते हैं, यहाँ एक ही है। तो हमारे निरीक्षण का उद्देश्य क्या है कि मेरा जो मूल स्वरूप था, मैं उस मूल स्वरूप के कितना निकट हूं और मुझे उस मूल स्वरूप तक कब तक पहुंच जाना है, मेरी स्पीड कैसी है। जैसे विज्ञान की दुनिया में हम किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां का आधार होता है स्विच। आपको गर्म पानी चाहिए, स्विच दबाओ, ठंडा पानी चाहिए, स्विच दबाओ। और साइलेंस की दुनिया में किसी भी चीज का अनुभव करना है तो उसका आधार है थॉट। जैसा आप थॉट पैदा करेंगे वही चीज आपके सामने आ जाएगी। तो मुझे किसका निरीक्षण करना है? स्वयं का। तो मैं क्या थॉट पैदा करूं? स्वयं का थॉट पैदा करूं ताकि मैं मेरे सामने आ जाऊं। मुझे अपने आप को देखना है ना। मैं कौन हूं? मैं अपने स्वरूप को अपने सामने ले आऊं और मैं अपने स्वरूप को देखना चालू करूं। देख रही हैं आप अपने स्वरूप को? कैसा स्वरूप है? शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है? ये तो इस समय है। इस समय हम शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। अब हम अपने सामने एक सिचुएशन लेके आते हैं। आपने देखा पानी किसी बर्तन में स्थिर होता है, एकदम स्वच्छ होता है, आप उसे पी सकते हैं। लेकिन एक चम्मच से जब आप उसे हिलाएंगे तो उसके नीचे जमा हुआ मिट्टी का कण, धूल का कण उसमें मिक्स हो जाएगा, अब वो पीने लायक नहीं रहेगा। इस समय स्थिर गिलास के पानी की तरह हम स्थिर, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। लेकिन कोई चम्मच से हिला दे, अर्थात कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या होता है? जो अशांति स्टोरेज में है, अभी तो वो स्टोर में पड़ी है, अशांति स्टोर में पड़ी है, नफरत इस समय स्टोर में पड़ी है, कोई परिस्थिति आके हिलाती है तो क्या हो जाता है, वो स्टोर में पड़ी हुई अशांति, स्टोर में पड़ी हुई नफरत इस शांत स्वरूप के ऊपर हावी हो जाती है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम केवल शांति के समय शांत न रहें, लेकिन जब हमें कोई हिलाए उस वक्त भी हम शांत रहें, उस वक्त भी हमें नफरत न आए। तो मुझे ये निरीक्षण करना है कि मैं केवल शांति में ही शांत हूं या अशांति में भी शांत हूं। मैं केवल प्रेममय लोगों के बीच प्रेममय हूं या मैं प्रेममय लोग नहीं है तब भी मैं प्रेममय हूं, मुझे ये निरीक्षण करना है। और उसमें भी मेरी उस नेगेटिविटी की इंटेंसिटी कितनी है, पानी पर लकीर की तरह से अशांति आई या मिट्टी पर लकीर की तरह से अशांति आई या इससे भी आगे बढ़ गई। एक मिनट एकाग्र होकर के अपने से ये सवाल पूछिए और खुद ही उत्तर दीजिए कि मैं केवल शांत स्वरूप अवस्था में शांत रहता हूं या अशांति के माहौल में भी मैं शांत रह सकता हूं, नेगेटिव लोगों के बीच में भी मैं अशांत रह सकता हूं। एक मिनट एकाग्र हो जाइए, निरीक्षण कीजिए हमारी स्थिति कैसी है। ओम शांति। सबके भिन्न भिन्न उत्तर आए होंगे सबकी, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं तो जब कोई पेपर आता है तो हमारे नंबर सबके अलग अलग आते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इस निरीक्षण का उद्देश्य क्या है या हम भट्टी करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, मुझे पहले ये रियलाइज करना है। जैसे डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है कि भाई इसके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है और फिर वो हीमोग्लोबिन बढ़ने वाली दवा देता है, तो ये डायग्नोस किया हमने भाई मेरे में शांति की शक्ति की कमी है, शांति का लेवल इतना है कि मुझे कोई कुछ न बोले तो मैं शांत रह सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई जरा सा भी हिला दे तो बस मेरी शांति उचट जाती है। तो ये तो लेवल बहुत कम है शांति का, मेरा लेवल इतना होना चाहिए, नंबर एक मैं शांत रहूं, नंबर दो मुझे कोई हिलाए तो भी शांत रहूं, और नंबर तीन हिलाने वाले को भी मैं शांत कर दूं, वो थर्ड स्टेज है, मेरा लेवल इतना हाई होना चाहिए। जितने भी गुण है, शांति का गुण, प्रेम का गुण, पवित्रता का गुण, किसी दृश्य को देख करके मेरा नेगेटिव चल पड़ा, मैंने औरों को सुनाकर उनको भी नेगेटिव बना दिया, या मैंने अपने को भी नियंत्रण में रखा और दूसरों को भी ऐसी बात सुनाई कि उनका नेगेटिव जाता हुआ मन पॉजिटिव हो गया, तो मैं कहां हूं और मुझे इसको कैसे बढ़ाना है। जैसे बाबा कहती हैं कि अगर आपको अशांति को जीतना है तो आप शांति की शक्ति को बढ़ाओ, डॉक्टर भी ऐसे ही करते हैं ना, जिस चीज की शरीर में कमी होती है उसे कनेक्टेड टेबलेट्स दे देते हैं तो वो बढ़ जाती है चीज। तो मुझे उसके लिए क्या अभ्यास करना है, मैं बार बार शांत स्वरूप स्थिति का अभ्यास करूं। एक दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो आर्मी के लोग हैं, भारत की सेना के लोग हैं, अभी कितने वर्षों से कोई युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी युद्ध की तैयारी हमेशा ये एवर रेडी स्टेज में रहती है। और उससे भी आगे ये लोग अपनी ही सेना को दो ग्रुप बना लेते, एक पाकिस्तान बन जाता है, एक हिंदुस्तान बन जाता है, और एक आर्टिफिशियल युद्ध करते हैं ये, ताकि इन्हें रहे कि हम युद्ध में कितने एक्टिव हैं या हमारी तैयारी कितनी है उसका पता पड़े, नहीं तो युद्ध कितने दिन से नहीं हुआ, खाली बैठ जाएंगे तो वो अभ्यास ही छूट जाएगा। तो हम भी अपने सामने एक सिचुएशन विजुअलाइज करें। आपके जीवन में कई सिचुएशन आती होंगी, उसमें से किसी एक को आप विजुअलाइज कीजिए। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका अपमान कर देता होगा, आपको जोर से बोल देता होगा, आप सेंटर से प्रोग्राम में से जाते हैं, थोड़ी आपकी ओपोजिशन कर देता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ज्ञान के बारे में या आपकी धारणाओं के बारे में सवाल उठा देता होगा, होगा कोई ना कोई तो जरूर। आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ऑफिस में और घर में नहीं होगा तो सेंटर पे कोई ऐसा होगा। किसी एक सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए कि कोई व्यक्ति आया और उसने आपके सामने बैठ करके आपकी ग्लानी की, आप बोलते ठीक से नहीं हो, आप व्यवहार ठीक से नहीं करते हो, या आप लेट उठते हो, या ड्यूटी पर लेट आते हो, फिर आपकी प्रतिक्रिया कैसी रही, आपने क्या किया। युद्ध आने से पहले युद्ध का अभ्यास करके देखिए। रियल किसी के द्वारा ग्लानी किए जाने से पहले आप उस सिचुएशन को अपने सामने ले आइए। कोई आपकी ग्लानी कर रहा है, आप क्या करेंगे। एक मिनट के लिए अभ्यास करो। कोई आपकी ग्लानी कर रहा है, उस समय आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, और आप क्या करते हैं। ओम शांति। एक है, ग्लानी करने वाले से हम नाराज हो गए, बोलना बंद कर दिया, उसके सामने ही नहीं जाएंगे। ये तो बहुत साधारण लोगों का काम है, ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए। सुना अनसुना करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनना चाहिए। ग्लानी करने वाले को गले लगाना चाहिए। किसी ने लगाया है, बैठा है कोई यहाँ ऐसा, फूलों की वर्षा की है। अगर ग्लानी सच है, सबसे पहले तो सुनने के बाद अपने को एक एक अक्षर अपने पे उतारना है। इसमें 50% सच्चाई है और 50% सच्चाई नहीं है, लेकिन वो 50% सच्चाई मैं स्वीकार करूं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं ऐसा करता हूं। स्वीकार करना पहला कदम है, और मुझे इसे खत्म करना है। जो मेरी ग्लानी की बात इसने कही है, मुझे इसमें सुधार करना है, ये फिर अगला कदम है। और जिसने मुझे सुधार के लिए प्रेरित किया उसको मुझे थैंक्स देना है, ये भी उसके साथ उठाया जाने वाला कदम है। ये बहुत जरूरी है, इससे मेरी उन्नति बहुत ज्यादा होगी। इससे क्या होगा, जैसे बाबा कहते हैं ना, माया को चैलेंज करो। तो हम इस सिचुएशन में होंगे कि भाई कोई भी परिस्थिति कभी भी आ जाए, मेरा चैलेंज है, मुझे उससे फायदा ही होगा। जिसको कहते हैं सिक्का सीधा गिरे तो भी मुझे फायदा और उल्टा गिरे तो भी मुझे फायदा, अर्थात सिक्के के दोनों पहलू मेरे लिए फायदेमंद। कोई ग्लानी करे तो भी मुझे फायदा और कोई महिमा करेगा तो मुझे फायदा है ही, मेरा उमंग बढ़ जाएगा। लेकिन ग्लानी करेगा तो भी मेरा बहुत ज्यादा फायदा होगा, उसके बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। ग्लानी करने वाला मुझे दर्पण दिखाता है कि देखो मेरा जो दर्पण है उसमें मुझे मेरी शक्ल नहीं दिखती, लेकिन दूसरे को मेरी शक्ल बहुत अच्छी दिखती है, इसलिए वो मेरे। जैसे आपको पता है दुनिया में किताब एक आदमी लिखता है और समीक्षा उसकी दूसरा लिखता है, भाई इसमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं क्या माइनस पॉइंट्स हैं। तो हमारी जिंदगी की जो किताब है इसकी समीक्षा तो दूसरे ही करेंगे ना, हम कैसे करेंगे? अपनी जिंदगी की समीक्षा हम करें तो हम तो सारे ही प्लस पॉइंट देखेंगे उसमें, लेकिन दूसरे लोग बताएंगे कि कितना प्लस है कितना माइनस है। तो मेरे को वो समीक्षक चाहिए, जितने ज्यादा हो उतने अच्छे, ताकि मैं करेक्शन करूं जल्दी जल्दी, मौका मिले मुझे करेक्शन का। तो असली सिचुएशन आने से पहले हम उसके लिए रेडी रहें। बाबा कहते हैं जब परिस्थिति आए तब हथियार पहने करने लगोगे तो काम कैसे बनेगा, पहने से पहने करके रखो, परिस्थिति आए तो उनको यूज कर सके। जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आती हैं और अगर उन्हें हम जीत नहीं सकते तो उसका कारण क्या है? ये जो आत्मा के मूल सात गुण हैं, इनमें से किसी ना किसी एक की कमी, कहीं हम शांत रहने में पीछे रह गए, कहीं हम प्रेम देने में पीछे रह गए, कहीं हम पवित्रता में पीछे रह गए, कहीं हम आत्मा की शक्ति शो करने में पीछे रह गए। थोड़े दिन पहले बाबा ने बोला था कि जैसे डॉक्टर कहते हैं विटामिन ए की कमी है कि बी की कमी है कि सी की कमी है, तो आप भी देखो किसकी कमी है फिर उसको बढ़ाओ। ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना साइकिल, समझो ड्रामा की पॉइंट है। आत्मा हलचल में है, खुद की बीमारी है या किसी नियर एंड डियर की बीमारी है तो आत्मा क्या होती है, हलचल में आती। विजुअलाइज करो कि घर का एक बहुत प्रिय व्यक्ति बहुत बीमार है, आपकी क्या हालत होगी? दुनिया में तो लोग कहते हैं अरे अशुभ मत बोलो, ऐसा मत बोलो, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये हम अशुभ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन के लिए हम अपने को तैयार कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर क्या, उस समय मेरी स्थिति क्या होगी, मैं आत्मा कितनी स्थिर हूं, कितनी एकरस हूं, क्या मुझे उस समय ड्रामा याद आएगा, क्या मुझे कर्मों का हिसाब किताब याद आएगा, या उस समय मैं हिलूंगी? किसी की डेथ हो गई, देखने में ये आता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर आत्मा अचल अडोल रहती है तो उससे इतनी ज्यादा सेवा होती है जितनी कई भाषणों से भी सेवा नहीं होती है। तो क्या मैं इतनी नष्टो मोहा, इतनी साक्षी, इतनी डिटैच हूं? ये हमको आत्मनिरीक्षण करना है, ये हमारे पेपर है, हमको देखना है ये पेपर आए तो मेरी कितनी तैयारी है, ये पेपर आए तो मेरी कितनी तैयारी है, ये पेपर आए तो मेरी कितनी तैयारी है। और हमारे पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं सारे, दुनिया के पेपर तो सिलेबस के बीच में से आते हैं, हमारा कोई सिलेबस ही नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई भी पेपर आ जाता है। तो मैं कितनी अचल अडोल, कितनी एक रस हूं। सेंसिटिव होंगे, नाजुक होंगे, फीलिंग वाले होंगे, कंपैरिजन करेंगे तो एक रस नहीं रहेंगे। ये हिलाने वाली चीजें, ये सारी बातें हिलाने वाली, साक्षी रहेंगे, डिटैच रहेंगे, निर्मोही रहेंगे, अनासक्त रहेंगे, हिलेंगे नहीं। हमारी जो स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, वास्तव में उसकी जांच कर्म के दौरान होती है, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हमारा जो हमारी जो पढ़ाई है वो कर्म योग है। कर्म के दौरान हमें मालूम पड़ता है कि हम कहां पहुंचे। योग के दौरान हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी एकाग्रता कितनी है, और कर्म के दौरान हमें ये पता पड़ता है कि हमारी सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति कितनी है। बिना कर्म किए मालूम नहीं पड़ सकता। कोई बैठा बैठा सोचता होगा कि मैं बहुत सहनशील हूं, लेकिन वास्तव में सहनशीलता का पता तब पड़ेगा जब सहन करने की कोई परिस्थिति सामने आएगी। इसलिए हम प्रैक्टिकल फील्ड में अपनी जांच बहुत अच्छी कर पाते हैं। मेरी समदृष्टि कितनी है, मैं निष्पक्ष कितना हूं, मैं एक लौकिक उदाहरण आपको देती हूं, फिर एक ज्ञान वाला उदाहरण भी देती हूं। मैं एक स्कूल में गई, भाषण किया, एक बच्चे से सवाल पूछा जो आगे आगे बैठा था, उसने उत्तर दिया बहुत बढ़िया, बच्चों ने ताली बजाई, मैंने शाबाशी दी। सॉरी, आगे वाले बच्चे से सवाल पूछा, उसने उत्तर नहीं दिया, पीछे वाले बच्चे ने खड़े होके ठीक उत्तर दिया, मैंने शाबाशी दी, बच्चों ने ताली बजाई, मैंने मैडम का मुंह देखा, मैडम का मुंह उतरा हुआ था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भाषण पूरा होने के बाद वो मुझे ऑफिस में ले गई। वहां वो बच्चा खड़ा था जो आगे आगे बैठा था, और मैडम ने कहा ये मेरा बच्चा है, इसे आप आशीर्वाद दीजिए। आप समझ गए मेरी समदृष्टि कितनी है? क्या मुझे मेरा बच्चा ही दिखता है? स्कूल में जाके भी, टीचर होके भी मेरी दृष्टि इतनी दैहिक है कि 50 बच्चों में मुझे केवल मेरा ही बच्चा दिखता है, बाकी बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं होना तो ये चाहिए, कहते हैं जो सक्सेसफुल मदर वो होती है जो माँ के साथ टीचर बने घर में, और सक्सेसफुल टीचर वो होती है जो स्कूल में टीचर के साथ माँ बनी। तो मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, ऑफिस में हूँ, घर भी एक तरह का ऑफिस ही है, उसमें 10 तरह की आत्माएं हैं, क्या मेरी सबके लिए आत्मिक दृष्टि है? ये मुझे निरीक्षण करना है। भट्टी में अपने से सवाल पूछना है, बेटा और बेटी के लिए समदृष्टि है, बहू और बेटी के लिए समदृष्टि है, है समदृष्टि? इसका आपको उत्तर देना है। आप सबको आत्मा देखते हैं? एक बार आत्मनिरीक्षण कीजिए कि परिवार में समदृष्टि कितनी रहती है। बच्ची ने गलती की, तुरंत माफ हो गई, बहू ने गलती की, वो चित्त पे ही रखी रही, निकल ही नहीं रही है चित्त से। एक बार देखिए, जरा अपनी चेकिंग कीजिए। ओम शांति। जो रिजल्ट आया उसे नोट कीजिए और उसमें आप कितना सुधार करना चाहते हैं वो भी लिखिए, मुझे कितना सुधार करना है इस दृष्टि में। अभी एक ज्ञान वाला एग्जांपल लेती हूँ। एक भाई 15 साल से ज्ञान में, अपनी बीबी को माताजी कह के बुलाता है, बुजुर्ग होते हैं तो ऐसे ही बुलाते हैं ना माताजी, बच्चों का नाम लेके भी माताजी बुला लेते हैं। देह अभिमान निकल चुका है, 15 साल से ज्ञान में है, थोड़ा सूक्ष्म रूप में है, मोटा देह अभिमान निकल गया है, माताजी समझते हैं, माताजी की तरह व्यवहार करते हैं। एक दिन उनकी एक बेटी आती है ससुराल से, पिता अपनी कुर्सी पे बैठा है, बेटी के आते ही कुर्सी छोड़ देता है, खुद नीचे एक चौकी पे बैठता है, बेटी को अपनी कुर्सी पे बिठाता है, वार्तालाप शुरू होता है, इतनी देर में पिता का फोन आता है, वो उठ करके दूसरे कमरे में फोन अटेंड करने चला जाता है। इतनी देर में माताजी पिता वाली कुर्सी पे आके बैठ जाती हैं और बिटिया नीचे चौकी पे बैठ जाती हैं और माँ बेटी बातों में मशगूल हो जाती है, क्योंकि बेटी ससुराल से आई है, कुछ सुना रही। फोन अटेंड करके वो आते हैं और देखते हैं मेरी कुर्सी पे माताजी बैठी हैं। कहते तो मुख से माताजी, लेकिन अंदर से मेरी कुर्सी पे बैठी है, और खड़े हो जाते हैं। वो उठती नहीं है तो बड़ा जोर से गुस्सा आता है, मैं 1 घंटे से खड़ा हूं, तेरे को ये भी तहजीब नहीं कि मुझे देख के तुम खड़ी हो जाओ। माताजी कहती हैं कि तुम झूठ बोलते हो, सिर्फ 10 मिनट तुमको, 5 मिनट तुमको खड़े हुए, और तुम ज्ञानी बने फिरते हो, माताजी कहते हो, लेकिन अभी भी भान कौन सा है, मेरी बीबी है, मुझे देख करके उठी क्यों नहीं। ये क्या है? सूक्ष्म पुराना संस्कार, बड़प्पन का संस्कार। बेटी के आगे उठ के खड़ा हो गया, लेकिन बीबी से सलाम चाहिए। वैसे माताजी कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो धारणा है वो शब्दों तक तो आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बीज का कुछ अंश जो बहुत गहरा है अंदर, लेकिन उसने तुरंत अपने को संभाल लिया और बोला सॉरी, और तुरंत चार्ट में लिखा आज मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे थोड़ा सा देह अभिमान आया। इतना पुरुषार्थ हो गया कि रियलाइजेशन भी हो गई और अपने को बदल भी लिया, लेकिन एक बार आ गया तो 1 मिनट पुनः अंतर्मुखी हो जाइए और देखिए कि घर में सचमुच आत्मिक दृष्टि कितनी बनी है, सम दृष्टि कितनी बनी है। सभी चेक करेंगे, बहनें भी करेंगी, भाई भी चेक करेंगे। ओम शांति। जो रिजल्ट आया उसे आप लिख लीजिए, उसमें कितने सुधार की जरूरत है वो भी लिख लीजिए। बाबा कहते हैं माया को जीतने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली बनी, मसलन कितनी संयमित हूं, मेरा अपने आप पर कितना नियंत्रण है। अभी तो हम नियंत्रित बैठे हैं, लेकिन मन को चलायमान करने वाली कोई बात कोई घटना मेरे सामने है, क्या उस समय मैं आत्मनियंत्रित हूं? बचपन का कोई व्यक्ति आपके साथ आकर के मिला 20 साल के बाद, आप क्या करते हैं? 20 साल पुरानी बातों में कितना बहते हैं? आधा घंटा, घंटा, बह गए पुरानी बातों में, या दो मिनट पुरानी बातें करके फिर आप ज्ञान की पटरी पे आ गए। अगर आप बह गए, वो सुनाता रहा आप भी सुनाते रहे, वो भी सुनाता रहा आप भी सुनाते रहे, आप इमोशनल हो गए 20 साल पुरानी बातों को याद करके। जितना ज्यादा आप इमोशनल होंगे आपका समय, संकल्प और शक्ति जाएगी। अगर आपने दो मिनट बात की उसको राजी करने के लिए, हाँ मैंने आपको पहचाना, आप अमुक व्यक्ति हो, अमुक समय आप मेरे साथ रहे, और उसके बाद आप ज्ञान की पटरी पे वापस आ गए, तो आपकी शक्ति बनी रहेगी। आप किसी जाने पहचाने पुराने मित्र संबंधी के घर गए, जिनके घर आप किसी समय दो चार दिन रहे, जिस गांव में आप लंबे समय तक रहे, वहां आप गए और वहां के लोगों को देख करके आप इमोशनल हो गए, ये व्यक्ति इतना बड़ा हो गया, ये घर ऐसा बन गया, आप उन्हीं बातों में खोए रहे, उन्हीं की चर्चा करते रहे, वो सारा समय आपका इमोशनल इम्बैलेंस में जाएगा। लेकिन आपने जरा सी चर्चा की और उसके बाद आप अपने वर्तमान ऑक्यूपेशन, मैं एक ब्रह्मा कुमार हूं, मैं एक विश्व परिवर्तक हूं, मैं आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त हूं, आप अपने उस स्वरूप में आ गए, तो आप सशक्त और आप उन्हें अपनी धारा में बहाएंगे, नहीं तो वो आपको अपनी धारा में बहाएंगे। और हमें जाना आना तो पड़ता ही है, सबसे मिलना जुलना तो पड़ता ही है, तो मेरी कैसी स्थिति रहती है? क्या उस समय मैं ज्ञान युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, धारणा युक्त रहता हूं? कोई खाने की ऐसी चीज बनी जो बहुत रेयर बनती है, हमारे रेस्ट्रिक्शंस है ना खाने के, हम सब चीजें सब जगह हर समय नहीं खा सकते, वो खाने की चीज बनी, मैंने खाई सबके बराबर, लेकिन फिर भी मेरा मन उस चीज को बार बार याद कर रहा है। क्या मैं खाने के बाद, जैसे कछुआ इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, मैंने मुख रूपी इंद्री को सिकोड़ लिया, मुझे अभी भी इच्छा है उसको खाने की, हालांकि मैंने खा लिया एक बार, मैं कितना अनासक्त बना, मुझे ये कितना स्मृति में है कि मुझे सारे व्यंजन सतयुग में मिलने वाले हैं, ये कुछ समय का संयम है, मिले तो भी वाह वाह और नहीं मिले तो भी वाह वाह, मेरे में कितनी ताकत है, मुझ आत्मा में मैं कितना अनासक्त हूं, ये सब भट्टी में आपको चेक करके जाना है, अपने आप को आप पे ही नंबर देना है, मैं कितना अनासक्त हूं, मैं कितना स्थिर हूं, मैं कितना साक्षी हूं, ये चेक करने के लिए तो अपन आए, रोजमर्रा की जिंदगी में अपन ये चेक नहीं कर पाते, लेकिन आज अच्छे से एक एक इंद्री की चेकिंग करनी, आंखों से रंग बिरंगी चीजें देखने का कितना आकर्षण है, मैं ले तो नहीं सकता पर देख तो लूं, कम से कम आंखें तो तृप्त हो जाएं, लेने के लिए पॉकेट में कुछ नहीं है पर देखने में क्या जाता है, पर देखने में भी बहुत कुछ चला जाता है, उसमें पॉकेट के मनी जाते हैं खरीदने में, और आंखों में आत्मा की पॉकेट से मनी निकल जाते हैं, इसलिए कहावत बनी कि जब आप क्या जिस पेड़ आम खाने नहीं तो पेड़ गिनने नहीं, ऐसी एक कहावत है, हाँ ऐसा भी ऐसी भी एक कहावत है, जब आपको खाना ही नहीं है तो गिनती क्यों कर रहे हो? कानों से मैं कितना अनासक्त हूं, सुनने का मुझे कितना शौक है, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं, लेकिन सुनेंगे तो फिर आपके संकल्प भी चलेंगे, सुनी हुई चीज संकल्प जरूर चलवाएगी। क्या मैं सुनने के बाद तुरंत फुल स्टॉप लगा सकता हूं? कितने देर बाद फुल स्टॉप लगता है, बच्चे सेंटेंस लिखते हैं उसके तुरंत बाद फुल स्टॉप लगाते हैं तो उनको नंबर मिलते हैं। सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ और फुल स्टॉप यहाँ जाके लगा तो ग्रामर वाले सारे नंबर कट जाते हैं। कितनी देर बाद फुल स्टॉप लगता है, किसी ने कोई बात सुनाई, घर में ये हो गया, पड़ोस में ये हो गया, चलो सेंटर पे ये हो गया, कितनी देर बाद फुल स्टॉप लगा। एक बार मैं शांतिवन की किचन में रास्ते का भोजन लेने चली गई, वहां बहुत सारी माताएं बैठी थी जो भोजन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो उनको तो पता है मैं शांतिवन में रहती हूं। मैंने जैसे ही बोला मुझे रास्ते का भोजन दे दो, चार माताओं ने अपना काम छोड़ दिया। बहन जी अब आप शांतिवन में नहीं है क्या, कहाँ चली गई आप रास्ते का भोजन ले रही हैं, हमने तो सुना था आप शांति। मैंने बोला तुम लोग अपना काम करो, हाथ क्यों छोड़ दिए, मैं जवाब दूंगी ना। एक बहन है जो स्टेशन पे खड़ी है, मुझे उसको रास्ते का भोजन पहुंचाना है, तुम इतने उतावले क्यों हो गए एक सेकंड में, एक सेकंड में। अच्छा मान लीजिए मेरी ट्रांसफर भी हो गई, समय आएगा आपको पता पड़ जाएगा, आप अपना काम करो ना, काम छोड़ करके आप ऐसे खड़ी हो गए जैसे आपको ये सूचना सबसे पहले चाहिए कि मैं कहां चली गई। हम कितने उतावले हैं सूचनाओं के लिए, तो हमारा योग कहाँ है, सूचनाओं से, इधर की सूचना मिले उधर की मिले, वो क्या हो गया वो क्या हो गया, ये क्यों हो गया ये क्यों हो गया। मैं शांतिवन में रहती हूँ, मुझे 6 महीने के बाद 82 सूचनाएं मिलती, लोग मुझे कहते हैं तुम कहाँ रहती हो, मैं कहती हूँ पता नहीं मैं कहाँ रहती हूँ, एटलीस्ट सूचनाएं मेरे पास बिल्कुल घिसपिट के आती है, वो भी कोई हो जाए तब, इसलिए मुझे लोग बहुत उलाना देते हैं, तेरे को कुछ नहीं पता पड़ता। अच्छी बात है ना, नहीं पता पड़ता तो मेरा काम आराम से हो जाता है, पता पड़ जाए तो मेरे काम ही रुक जाएंगे, जैसे तुम लोग आज छोड़ के बैठ गए मैं भी आज छोड़ के बैठ जाऊंगी। इसलिए मुझे कितनी सूचनाएं चाहिए, क्या क्या सुनना चाहिए, मेरे लिए क्या क्या जरूरी है, मेरे लिए बाबा की मुरली तो जरूरी है, मेरे लिए पुरुषार्थ की बातें तो जरूरी है, या दादी कहाँ है वो जानना भी जरूरी है, बाकी मेरे लिए कोई चीज जरूरी नहीं। किसकी ट्रांसफर हो गई, मुझे ट्रांसफर करवानी है क्या, मुझे किसी के ट्रांसफर होने या उसका ऑफिस खाली हो गया मुझे बैठना है क्या वहां, मुझे क्या जरूरत है, मुझे केवल मेरा काम करना है, जो मेरे से बाबा चाहता है या यज्ञ ने मुझे जो ड्यूटी दे रखी है बस। तो मुझे ये देखना है मेरे कान कितने अनासक्त हैं, सूचनाएं सुनने का कितना शौक है, जितनी आसक्ति उतनी शक्ति कम हो जाएगी। पहले हम सुनेंगे, सुनने के बाद प्रश्न उठेगा ऐसा क्यों हो गया, फिर हम एक और व्यक्ति को ढूंढेंगे इसका क्यों का मुझे उत्तर दो, फिर वो उत्तर देगा, फिर हम संतुष्ट नहीं होंगे, फिर हम एक और को ढूंढेंगे, तो हमारा सारा दिन सूचना कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, प्रश्नों उत्तरों में, क्यों और कैसे में चला जाएगा। अगर हम उस एक दिन भट्टी कर लेते तो कितना किचड़ा निकल जाता अंदर का, और हमने वो किचड़ा भरने में दिन लगा दिया। तो मैं कितना अनासक्त, ये अपना चार्ट अपने को निकालना है, मुझे कितना शौक है बातें सुनने का, क्यों शौक, फिर अपने से सवाल पूछो कि उससे मुझे फायदा क्या होगा, अगर मुझे पता भी पड़ जाएगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, उसकी सीट तो मुझे मिलने वाली नहीं, मैं तो जाऊं वहीं रहूंगा। बोलने का कितना शौक है, अनावश्यक बिना जरूरत, कहते हैं जितने आप कम बोलेंगे उतने ज्यादा सुने जाएंगे, जितने ज्यादा बोलेंगे लोग उतना आपकी बातों पर कम ध्यान देंगे। जब बाबा आते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा कम से कम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। एक आंख से दृष्टि, दूसरा हाथ और तीसरा वाणी। बाबा ने 8 घंटा भी मुरली चलाई, 10 घंटा भी मुरली चलाई, बहुत करके ये 3 इंद्रियां यूज होती हैं, आंख, मुख और हाथ, बाकी सब सिकुड़ी रहती। अपने को ये भी निरीक्षण करना है कि अपन बिना जरूरत के अपनी किसी इंद्री को थकाते तो नहीं, जरूरत नहीं है तो उसको अपन आराम करने दे ताकि वो लॉन्ग लिविंग हो, हमारी अंतिम श्वास तक भी वो हमें साथ दे। अगर अपन उसको बिना बात यूज करके थका लेंगे तो लास्ट डेज में वो अपने को साथ नहीं देगी। कम से कम यूज करना। आप जानवर को देखना, चिड़िया को देखना ध्यान से, बकरी को देखना, कोई इंद्री इनकी कभी स्थिर नहीं होती। आंखें, मुंह, पांव चलते ही रहेंगे, ये स्थिर होना नहीं जानते। योगी बनना, स्थिर होना, ये क्वालिटी केवल मनुष्य को है। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वो सिकोड़ सकता है, कोई भी जानवर नहीं सिकोड़ पाता। गाय भैंस बैठती हैं तो फिर वो मुंह चलाती हैं, खाया हुआ उगारती हैं। बाबा उसका दूसरा मीनिंग भी बताते हैं, वो भी मीनिंग है, लेकिन कुल मिलाकर के उनका कुछ ना कुछ हिलता ही रहेगा, बिल्कुल स्थिर नहीं हो सकते। ये केवल अपने को क्वालिटी है कि अपन बिल्कुल स्थिर हो सकते हैं, लेकिन केवल शरीर से स्थिर नहीं, अपने को मन से भी स्थिर होना। लेकिन स्थिरता एक वरदान, मोशनलेस स्टेज, क्योंकि तन की स्थिरता मन को भी योगदान देती है। मैं ये जो सामने बहन बैठी है इससे लगभग 3 मीटर की दूरी पे हूं, 3 नहीं तो 2 मीटर की दूरी पे तो हूं। ये बहन जो आगे आगे बैठी, मान लीजिए मैं इस बहन के बालों को देखती हूं और मैं कहती हूं कि मुझे इसके बाल बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, मेरी आंख मेरे से कितनी दूरी पर है, 2 इंच, 2.5 इंच, और बहन मेरे से कितनी दूर है, 2 मीटर। हमें पहले किसको बदलना चाहिए, 2.5 इंच दूरी वाले को या 2 मीटर दूर वाले को? मैं किसको बदलूं? मेरी आंख मुझे पसंद नहीं है, मैं ना देखूं। अच्छा, इसके मुझे बाल बनाना पसंद नहीं है, इसके कपड़े पसंद नहीं है, इसकी बैठक पसंद नहीं है, मैं किस किस को, सबको देख के मैं तो उसका वो पसंद नहीं है। सारी दुनिया में कितनी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं अपनी आंखों को चेंज करूं? तुमको जो पसंद नहीं है उसको मत देखो, जो तुमको पसंद है उसी को देखो। और आज बोला क्या बाबा ने, सतयुग को देखो, फरिश्तों को देखो, परमधाम को देखो, इसको देखो ही मत। तो मुझे ये निरीक्षण करना है कि मैं किसी को देख करके इरिटेट तो नहीं होता हूं, ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। जैसे मैं कहता हूं इसको देख के मुझे बड़ी इरिटेशन आती, तो ये मेरी बहादुरी थोड़ी है, ये मेरी कमजोरी है, मैं क्यों इरिटेट होता हूं भाई? मुझे अपने को बदलना चाहिए। जब अपन बाजार में जाते हैं और किसी चेयर की दुकान पे अपन गए, मान लीजिए अपन कहते हैं भाई मुझे चेयर चाहिए, दो चार डिजाइन दिखाओ, उसने दो दिखाए, तीन दिखाए, चार पांच, हम कहते हैं और नहीं है, कहता नहीं और नहीं है, तो भाई ये तो छोटी दुकान है, हमको ये नहीं चाहिए, चलो बड़े शोरूम में चलते हैं। बड़े में गए, उसने हमको 50 प्रकार की चेयर दिखाई, एक को हाथ है, एक को हाथ नहीं है, पीछे गद्दी है, किसी को गद्दी नहीं है, कोई लोहे की है, कोई प्लास्टिक की है, कोई लकड़ी की है, तो अपन खुश होते हैं ना, क्या कहते हैं, अरे इतनी वैरायटी है उसके पास कुर्सियों की, देख करके ना बड़ा आनंद आए। तो कुर्सियों की वैरायटी तो देख के आनंद आया, और मनुष्यों की वैरायटी देख के, जब एक मनुष्य कलाकार कुर्सियों की इतनी वैरायटी बना सकता है, तो इस ड्रामा का कलाकार कितना बड़ा है जिसने इतनी वैरायटी के मनुष्य बनाई, नहीं तो वो बेचारे एक जैसे बना देता। तो बाजार में वैरायटी चीजों को देख के आनंद आता है ना, सारी चप्पलें एक जैसी होती क्या होता, सारे बैग एक जैसे होते क्या होता, इसलिए कंपनियां बड़ी होशियार अलग अलग बैग बनाती, हर दिन नया बैग निकाल देती। तो मुझे निरीक्षण करना है, कहीं मैं ये तो नहीं चाहता कि सब मेरे जैसे हो जाएं, ये मेरी तरह क्यों नहीं बोलता, ये मेरी तरह सुबह क्यों नहीं उठता, ये मेरी तरह काम क्यों नहीं करता, नहीं मेरे जैसे सब नहीं हो सकते। वैरायटी अच्छी है, वैरायटी अच्छी लगती है ना, कोई जल्दी उठता है, कोई देरी से उठता है, कोई जल्दी काम करता है, कोई धीरे धीरे करता है, वैरायटी अच्छी लगती है ना, कोई कुर्सी पहिए वाली है एकदम दौड़ जाती है, और कोई घसीटनी पड़ती है, दोनों चाहिए ना, सारी पहिए वाली हो जाए तो कैसे काम चलेगा, तो मनुष्य भी तो ऐसे होने चाहिए ना। तो मुझे निरीक्षण करना है कि मैं इरिटेट तो नहीं होता, निरीक्षण का बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें अपन रोज निरीक्षण करेंगे अपना, तो काफी कवर हो जाएगा। संपूर्णता तभी आएगी जब हम आत्म निरीक्षण करेंगे। द्वापर युग में, कलयुग में अपन ने दूसरों का बहुत निरीक्षण किया, ये छोटा सा युग है आत्म निरीक्षण का, बार बार भीतर जाना है, क्या मेरी ये सोच ठीक है, क्या मेरा ये बोल ठीक है, क्या ये मेरी दृष्टि ठीक है, बार बार। बीच में थोड़ा भी गैप आ गया, इतनी देर में ही कोई ना कोई नेगेटिव बात घुस जाती है। आप अभी अभी इसके ऊपर कपड़ा मारेंगे टेबल पे, और थोड़ी देर के बाद आप उंगली घुमाना, आपकी उंगली को मिट्टी लग जाएगी। आंधी भी नहीं है, तूफान भी नहीं है, बिल्कुल स्वच्छता है, फिर भी मिट्टी कहां से आ गई, क्योंकि मिट्टी की दुनिया, मिट्टी आएगी लाख कोशिश के बाद, एसी रूम में भी मिट्टी आ जाती। ऐसी मैंने अभी अभी अपना निरीक्षण किया, अभी अभी अपने को चेक किया, अपनी अभी अपनी मेंटेलिटी को पॉजिटिव बनाया, अब थोड़ी सी देर इसको खुला छोड़ देंगे, थोड़ा सा, इतनी देर में फिर अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी घुस जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने पे बड़ा स्ट्रोंग पहरा लगा करके देखो, लगा करके रखो घुसे, और फिर चेक करो, फिर चेक करो, तो हमारी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी।
ओम शांति। आत्मनिरीक्षण के बहुत ही अलग अलग पहलू के माध्यम से उर्मिला बहन ने हमें टिप्स दी और रियलाइज भी करवाया कि कौन कौन सी पॉइंट हमारे जीवन में, पूरे दिन भर में, दिनचर्या में, आपसी संबंधों में जो हमें बाधा रूप है उसको हम कैसे सॉल्व करें, और वापस जो स्वस्थिति की महसूसता है उस पे हम कैसे टिके, बहुत ही सुंदरता से अढ़ाई घंटा हम सभी के बीच में रहे। और भट्टी का पहला ही दिन का ये पहला ही टॉपिक फाउंडेशन के रूप में जो मजबूत किया, उसके लिए हम सभी की ओर से मैं उर्मिला बहन जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक्स, आभार, धन्यवाद।